अमेरिका का भविष्य और 18 जुलाई 2020। संख्या एक।
वचा के गुफावासी, संसार के अंत में मूसा और एलिया।
मूसा और एलिया भविष्य सूचक प्रतीक है, जिन्हें प्रसंग के अनुसार या तो एक अकेले प्रतीक के रूप में समझा जा सकता है या ऐसे प्रतीक के रूप में जो दोनों भविष्य वक्ताओं को समाहित करता है। दो की गवाही पर कोई बात स्थापित होती है और प्रकाशित वाक्य 11 में मूसा और एलिया पुराने और नए नियम के दो गवाहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रूपांतरण में इंतकार फल्ज नेत्रोबन के प्रतिनिधित्व करता है। ये युग्म प्रतीक 144,000 एलिया और रविवार कानून के संकट के शहीदों मूसा दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। एक साथ होरेब की गुफा में वे दुनिया के अंत में परमेश्वर की उस प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उस संदेश को सुनते, पढ़ते और पालते हैं, जो परमेश्वर के चरित्र का एक प्रकाशन है और जिसमें एक लाओदीकियाई को फिलाडेल्फियाई में रूपांतरित करने की सामर्थ्य है। शीघ्र ही, बहुत शीघ्र, ऐसा समय आएगा जब मूर्ख लाओदीकियाई एडवेंटिस्टों के लिए उस तेल का लाभ उठाना संभव नहीं रहेगा जो इस पुकार देखो दूल्हा आता है का सही ढंग से उत्तर देने के लिए आवश्यक है।
और मूसा ने यहोवा से कहा, देख, तू मुझसे कहता है इस प्रजा को ऊपर ले चल, पर तूने मुझे ये नहीं बताया कि तू किसे मेरे संग भेजेगा। तो भी तूने कहा है मैं तुझे नाम लेकर जानता हूं और तूने मेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है। अब इसलिए यदि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो मैं विनती करता हूं, अब मुझे अपना मार्ग दिखा ताकि मैं तुझे जानूं और तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाऊं और ये विचार कर कि ये जाति तेरी प्रजा है। उसने कहा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी और मैं तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तेरी उपस्थिति मेरे साथ न जाए तो हमें यहां से ऊपर न ले चल, क्योंकि यहां किस बात से ये ज्ञात होगा कि मैं और तेरी प्रजा ने तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है? क्या इस बात से नहीं कि तू हमारे साथ जाता है? इसी से मैं और तेरी प्रजा पृथ्वी के ऊपर के सब लोगों से अलग ठहरेंगे। और यहोवा ने मूसा से कहा, जो बात तूने कही है उसे भी मैं करूंगा, क्योंकि तूने मेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है और मैं तुझे नाम लेकर जानता हूं। उसने कहा, मैं विनती करता हूं, मुझे अपनी महिमा दिखा। उसने कहा, मैं अपनी सारी भलाई को तेरे सम्मुख से होकर निकलने दूंगा और तेरे सामने यहोवा का नाम प्रकट करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करूंगा उस पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर मैं करुणा करूंगा उस पर करुणा करूंगा। और उसने कहा, तू मेरा मुख नहीं देख सकता, क्योंकि कोई मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, देख, मेरे पास एक स्थान है, वहां तू चट्टान पर खड़ा हो, और ऐसा होगा कि जब मेरी महिमा पास से निकलेगी तब मैं तुझे उस चट्टान की एक दरार में रखूंगा, और जब तक मैं निकल ना जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांप दूंगा। फिर मैं अपना हाथ हटा लूंगा और तू मेरी पीठ देखेगा, पर मेरा मुख ना देखा जाएगा। और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने लिए पहले की जैसी दो पत्थर की पट्टियां तराश ले, और मैं उन पट्टियों पर वही शब्द लिखूंगा जो पहली पट्टियों पर थे जिन्हें तूने तोड़ दिया। और तू भोर को तैयार होकर सुबह सुबह सीनाई पर्वत पर चढ़ आना और वहां पर्वत की चोटी पर मेरे सामने उपस्थित होना, और कोई मनुष्य तेरे साथ ना आए, न सारे पर्वत पर कहीं कोई मनुष्य दिखाई दे, और न झुंड झुंड भेड़ बकरियां या गाय बैल उस पर्वत के सामने चरें। तब उसने पहले की जैसी दो पत्थर की पट्टियां तराशी, और मूसा भोर को तड़के उठा और यहोवा के आदेश के अनुसार सीने पर्वत पर चढ़ गया और अपने हाथ में वे दो पत्थर की पट्टियां ले गया। तब यहोवा बादल में उतर आया और वहां उसके संग खड़ा हुआ और यहोवा के नाम की घोषणा की, और यहोवा उसके सामने से होकर गया और पुकार कर कहा, यहोवा, यहोवा परमेश्वर, दयालु और अनुग्रही, धीरजवंत और करुणा और सत्य में बहुत धनी, जो हजारों पर करुणा करता है, अधर्म, अपराध और पाप को क्षमा करता है, परंतु दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड बच्चों पर और बच्चों के बच्चों पर तीसरी और चौथी पीढ़ी तक देता है। तब मूसा ने शीघ्रता की, भूमि की ओर अपना सिर झुकाया और उपासना की, और उसने कहा, हे प्रभु, यदि अब मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो हे मेरे प्रभु, मैं विनती करता हूँ, हमारे बीच में चला, क्योंकि ये हठीली प्रजा है, और हमारे अधर्म और हमारे पाप को क्षमा कर और हमें अपनी निज संपत्ति बना ले। और उसने कहा, देख, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरी सारी प्रजा के सामने मैं ऐसे अद्भुत काम करूँगा जैसे ना तो सारी पृथ्वी पर और न किसी जाति में कभी किए गए हैं। और जिन लोगों के बीच तू है वे सब यहोवा का काम देखेंगे, क्योंकि जो काम मैं तेरे साथ करूँगा वह अत्यंत भय योग्य होगा। निर्गमन 33:12-33-34।
मूसा संसार के अंत में परमेश्वर की प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे लोग हैं जो जांच पड़ताल के न्याय के अंतिम दिनों में परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें अपना मार्ग दिखाए ताकि वे परमेश्वर को जान सकें। और इसके प्रत्युत्तर में उन्हें परमेश्वर से ऐसा उत्तर मिलता है जिसमें ये प्रतिज्ञा शामिल होती है कि उसकी उपस्थिति उनके साथ चलेगी और ये कि परमेश्वर उन लोगों को विश्राम देगा।
प्रभु यूं कहता है, मार्गों पर खड़े हो और देखो, और पुराने पथों के विषय में पूछो कि उत्तम मार्ग कहाँ है, नए में चलो, तब तुम्हें अपने प्राणों के लिए विश्राम मिलेगा। परंतु उन्होंने कहा, हम उसमें नहीं चलेंगे, मैंने तुम्हारे ऊपर पहरेदार भी नियुक्त किए, ये कहते हुए तुरही की ध्वनि सुनो। परंतु उन्होंने कहा, हम नहीं सुनेंगे। यिर्मयाह 6:16-17।
यिर्मयाह एक ऐसे वर्ग की पहचान करता है जो देखना और सुनना से इनकार करता है, और इसलिए उन्हें वो विश्राम नहीं मिलता जो अच्छा मार्ग खोजने और उसमें चलने वालों से वादा किया गया है। उस विश्राम को यशाया ने तरोताजगी कहा है।
वो किसे ज्ञान सिखाएगा और किसे वो शिक्षा समझाएगा? क्या उन्हें जो दूध से छुड़ाए गए हैं और स्तनों से अलग किए गए हैं? क्योंकि नियम पर नियम, नियम पर नियम, पंक्ति पर पंक्ति, पंक्ति पर पंक्ति, यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि हकलाते होंठों और दूसरी भाषा के साथ वो इस लोगों से बोलेगा जिनसे उसने कहा, यही वो विश्राम है जिसके द्वारा तुम थके हुए को विश्राम दे सकते हो, और यही तरोताजगी है। फिर भी वे सुनना नहीं चाहते थे, परंतु उनके लिए यहोवा का वचन यही था, नियम पर नियम, नियम पर नियम, पंक्ति पर पंक्ति, पंक्ति पर पंक्ति, यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा, ताकि वे जाएं और पीठ के बल गिरे और टूट जाएं और फंसें और पकड़ लिए जाएं। यशाया 28:13।
विश्राम और ताजगी उस अंतिम वर्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अंतिम चेतावनी संदेश के प्रचार के दौरान उंडेली जाती है।
मुझे वो समय दिखाया गया जब तीसरे स्वर्गदूत का संदेश समापन की ओर था। परमेश्वर की शक्ति उसकी प्रजा पर ठहरी हुई थी। उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया था और उनके सामने आने वाली परीक्षा की घड़ी के लिए वे तैयार थे। उन्होंने अंतिम वर्षा अर्थात प्रभु की उपस्थिति से आने वाली ताजगी प्राप्त कर ली थी और जीवित साक्ष्य पुनर्जीवित हो गया था। अंतिम महान चेतावनी हर जगह सुनाई दे चुकी थी और उसने उन पृथ्वी के निवासियों को उत्तेजित कर दिया और क्रोधित कर दिया था जो संदेश को स्वीकार करने से इनकार करते थे। प्रारंभिक लेखन 7 चेहरों।
आराम या ताजगी जो अंतिम वर्षा है का वचन उस प्रतिज्ञा को भी शामिल करता है जो गुफा में मूसा को दी गई थी कि परमेश्वर की उपस्थिति उसकी प्रजा के साथ जाएगी।
ये कार्य पेंतेकुस्त के दिन के समान होगा। जिस प्रकार सुसमाचार के आरंभ में पवित्र आत्मा के उंडे तमले जाने में पूर्व वर्षा दी गई थी ताकि अनमोल बीज अंकुरित हो उठे, उसी प्रकार उसके समापन पर उत्तर वर्षा दी जाएगी ताकि फसल पक सके। तब हम जानेंगे, यदि हम प्रभु को जानने में आगे बढ़ते जाएं, उसका निकलना भोर की तरह निश्चित है और वो हमारे पास वर्षा की तरह आएगा, अर्थात पृथ्वी पर पड़ने वाली उत्तर और पूर्व वर्षा के समान। होजिया 6:3। इसलिए सियोन के पुत्रों, आनंदित हो और अपने परमेश्वर यहोवा में उल्लास करो, क्योंकि उसने तुम्हें पूर्व वर्षा उचित मात्रा में दी है और वो तुम्हारे लिए वर्षा अर्थात पूर्व वर्षा और उत्तर वर्षा बरसाएगा। जोएल 2:33। अंतिम दिनों में परमेश्वर कहता है, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलू नहना, और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम पुण्य कारेगा वो उद्धार पाएगा। Acts 2:17-21। सुसमाचार का महान कार्य परमेश्वर की सामर्थ्य के उस प्रगटीकरण से कम के साथ समाप्त नहीं होगा जिसने उसके आरंभ को चिह्नित किया था। जो भविष्यद्वाणियां सुसमाचार के आरंभ में पूर्व वर्षा के उंडे तमले जाने में पूरी हुईं, वे उसके अंत में उत्तर वर्षा में फिर से पूरी होंगी। यही वे ताजगी के समय हैं जिनकी प्रतीक्षा प्रेरित पतरस कर रहा था जब उसने कहा, इसलिए मन फिराओ और परिवर्तित हो जाओ ताकि तुम्हारे पाप जांच पड़ताल के न्याय में मिटा दिए जाएं, जब प्रभु की उपस्थिति से ताजगी के समय आए और वो यीशु को भेजेगा। Acts 3:2-13। परमेश्वर के सेवक जिनके मुख पवित्र समर्पण की ज्योति से आलोकित और दमकते होंगे, स्वर का संदेश घोषित करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से जाएंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर हजारों कंठों से चेतावनी दी जाएगी, चमत्कार किए जाएंगे, रोगियों को चंगा किया जाएगा और विश्वासियों के साथ चिन्ह और आश्चर्य कर्म होंगे। शैतान भी झूठे आश्चर्य कर्मों के साथ कार्य करता है, जहां तक कि लोगों की आंखों के सामने स्वर्ग से आग तक उतार लाता है। Revelation 13:13 माना जाएगी। इस प्रकार पृथ्वी के निवासियों को अपना रुख तय करने के लिए लाया जाएगा। The Great Controversy 6:11-6:12।
अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, सुसमाचार की घोषणा के आरंभ में पवित्र आत्मा के उंडेले जाने द्वारा पूर्व चित्रित है। जो लोग ये नहीं सुनते कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, उनके लिए प्रभु का वचन ये था, संसार के अंत को प्रदर्शित करने के लिए एक भविष्य सूचक इतिहास रेखा को दूसरी भविष्य सूचक इतिहास रेखा से जोड़ना। ये वही सिद्धांत है कि किसी बात का अंत उसके आरंभ द्वारा चित्रित होता है। भविष्यवाणी के इस नियम को मूर्ख लाओदिकियाई सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोग अस्वीकार करते हैं। जब इसे स्वीकार किया जाता है तो परमेश्वर ज्ञान सिखा सकता है, जिसे दानियल कहता है कि अंत समय में बढ़ाया जाता है, और वही ज्ञान जिसे अस्वीकार करने के कारण होशे के अनुसार परमेश्वर की प्रजा नाश हो जाती है। यशाया और यिर्मयाह में वर्णित वह वर्ग जो सुनने या देखने से इनकार करता है, ताजगी को अस्वीकार करता है, जो कि वह विश्राम है जिसे परमेश्वर अपनी अंतिम दिन की प्रजा को देने का वादा करता है, ताकि वे अंतिम दिनों के संकट को सुरक्षित रूप से पार कर सकें। प्रभु का नाम स्वभाव जो परमेश्वर ने मूसा से प्रकट किया था, ये था कि प्रभु परमेश्वर करुणामय और अनुग्रहकारी, दीर्घशील और अनुग्रह भलाई व सत्य में भरपूर है। उसका स्वभाव दया और सत्य है। वह सत्य जो उसके स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है, सदैव उसकी दया के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि कोई व्यक्ति उसके सत्य को नहीं समझेगा जब तक परमेश्वर पहले उस पर अपनी दया न करे, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा स्वभाव से रहित है। ये सत्य कि यीशु मसीह ही अल्फा और ओमेगा है, उन लोगों द्वारा पहचाना और थामा जाता है जिनके अधर्म और पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिए हैं। वह क्षमा अन्वेषण न्याय के अंतिम चरणों में होती है, जिन पर वह अपनी दया करता है और इस प्रकार उनके पाप क्षमा करता है। उन्हें वह अपनी विरासत के रूप में ले लेता है और उनसे वाचा करता है।
इस पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दिनों में परमेश्वर की अपनी आज्ञाओं का पालन करने वाली प्रजा के साथ की वाचा का नवीनीकरण होना है। रिव्यू एंड हेरॉल्ड 26 फरवरी 1914।
मूसा सहित सभी भविष्यद्वक्ता अन्वेषणात्मक न्याय के अंतिम दिनों की ओर संकेत करते हैं, जब परमेश्वर उन लोगों के साथ अपनी वाचा का नवीनीकरण करते हैं जिन्हें 144,000 के रूप में पहचाना गया है। और जब वो वाचा स्थापित हो जाती है, तब परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम करेगा जो सारी पृथ्वी पर और किसी भी राष्ट्र में कभी नहीं किए गए, और जिन जिन लोगों के बीच तुम हो वे सब प्रभु का कार्य देखेंगे, क्योंकि जो काम मैं तुम्हारे साथ करूंगा वो भयंकर होगा। माउंट होरेब, जिसे माउंट सीनै भी कहा जाता है, पर गुफा में मूसा का अनुभव, मूसा के परमेश्वर की प्रजा के साथ
संघर्ष के संदर्भ में रखा गया था। उनका संघर्ष उस कार्य को पूरा करना था जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। मूसा दुनिया के लिए परमेश्वर के संदेश के बारे में संघर्ष कर रहा था, ठीक उस समय से पहले जब प्रभु ने अपनी महिमा मूसा को दिखाई। हम पाते हैं कि मूसा प्रभु के विरुद्ध तर्क का उपयोग कर रहा है, ये सुझाव देते हुए कि यदि प्रभु उन विद्रोहियों का नाश कर दें जो अभी अभी हारून के सुनहरे बछड़े के चारों ओर नृत्य कर रहे थे, तो उन विद्रोहियों का विनाश उस संदेश को नष्ट कर देगा जो परमेश्वर की शक्ति को दर्शा रहा था।
और यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इस प्रजा को देखा है और देखो ये गर्दन ताने हुए लोग हैं, अब इसलिए तू मुझे छोड़ दे ताकि मेरा क्रोध उनके विरुद्ध भड़क उठे और मैं उन्हें नष्ट कर दूं और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब मूसा ने अपने परमेश्वर यहोवा से विनती की और कहा, हे प्रभु, तेरा क्रोध अपनी उस प्रजा पर क्यों भड़क उठे जिसे तू बड़ी शक्ति और पराक्रमी हाथ से मिस्र देश से निकाल लाया? ऐसा क्यों हो कि मिस्री कहे वह उन्हें अनिष्ट करने के लिए निकाल लाया कि उन्हें पहाड़ों में मार डाले और पृथ्वी के ऊपर से उनका नाश कर दे? अपने प्रचंड क्रोध से फिर और अपनी प्रजा पर ये अनिष्ट करने से पछता। अपने दास अब्राहम, इसहाक और इसराइल को स्मरण कर जिनसे तूने अपने आप से शपथ खाई थी और उनसे कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा और जिस सारे देश के विषय में मैंने कहा है वो मैं तुम्हारे वंश को दूंगा और वे उसे सदा के लिए विरासत में पाएंगे। तब यहोवा उस अनिष्ट से पछताया जो वो अपनी प्रजा पर लाना चाहता था। निर्गमन 23:9-3।
14. मूसा का गुफा वाला अनुभव उस संदेश को भी शामिल करता है जिसे संसार के सामने प्रस्तुत करने के लिए मूसा को नियुक्त किया गया था। प्रभु का मूसा के पास से होकर गुरबजरना और अपने चरित्र की घोषणा करना, इसकी गवाही परमेश्वर की बागी लाओदीव प्रजा के विषय में एक आंतरिक संदेश के संदर्भ में रखी गई है, और एलिया के गुफा अनुभव का संदर्भ उसकी इजेबेल के साथ संघर्ष अर्थात संयुक्त राज्य, पापसी और संयुक्त राष्ट्र के त्रिगठबंधन के भीतर रखा गया था। एक कलीसिया के लिए आंतरिक संदेश का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा संसार के लिए बाहरी संदेश का। परंतु मूसा और एलिया ये दो गवाह होरैब की उसी गुफा में है और संसार के अंत में भी दोनों उसी गुफा में प्रस्तुत हैं।
और अहाब ने ईजेबेल को सब बताया जो एलिया ने किया था और ये भी कि उसने कैसे सब भविष्यद्वक्ताओं को तलवार से मार डाला। तब ईजेबेल ने एलिया के पास एक दूत भेजा ये कहकर, देवता मुझे ऐसा ही करें वरन उससे भी अधिक यदि मैं कल इसी समय तक तेरे प्राण को उनमें से किसी एक के प्राण के समान न कर दूं। और जब उसने ये देखा तो वो उठा और अपने प्राण बचाने को चल पड़ा और बेरशेबा पहुंचा जो यहूदा में है और वहां अपने सेवक को छोड़ दिया, परंतु वो स्वयं एक दिन का मार्ग चलकर जंगल में गया और एक जूनीपर के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और उसने अपने लिए ये विनती की कि वो मर जाए और कहा, बस अब हे प्रभु मेरा प्राण ले ले क्योंकि मैं अपने पितरों से अच्छा नहीं हूं। और वो जूनीपर के पेड़ के नीचे लेटकर सो गया। तब देखो एक दूत ने उसे छू लिया और उससे कहा, उठ और खा। और उसने देखा तो क्या देखता है कि उसके सिरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी का एक पात्र रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। तब प्रभु का दूत दूसरी बार आया और उसे छुआ और कहा, उठ और खा क्योंकि ये यात्रा तेरे लिए बहुत बड़ी है। तब वो उठा और खाया और पिया और उस भोजन की शक्ति से 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के पर्वत होरेब तक चलता गया और वो वहाँ एक गुफा में पहुँचा और वहीं ठहरा। और देखो प्रभु का वचन उसके पास आया और उसने उससे कहा, एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा, मैं सेनाओं के प्रभु परमेश्वर के लिए अत्यंत उत्साही रहा हूँ क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा को छोड़ दिया, तेरे वेदियों को ढा दिया और तेरे भविष्यद्वक्ताओं को तलवार से मार डाला और मैं, हाँ केवल मैं ही बचा हूँ और वे मेरा प्राण लेने को ढूंढ रहे हैं। तब उसने कहा, बाहर निकल और पर्वत पर प्रभु के सामने खड़ा हो और देखो, प्रभु वहां गए से होकर निकला और एक बड़ी और प्रचंड आंधी ने प्रभु के आगे आगे पर्वतों को फाड़ डाला और चट्टानों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, परंतु प्रभु आंधी में न था। और आंधी के बाद भूकंप आया, परंतु प्रभु भूकंप में न था। और भूकंप के बाद आग आई, परंतु प्रभु आग में न था। और आग के बाद एक धीमी कोमल आवाज आई, और ऐसा हुआ कि जब एलिया ने उसे सुना तो उसने अपना मुख अपने चोगे में ढांप लिया और बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। और देखो, उसके पास एक आवाज आई और उसने कहा, एलिया, तू यहां क्या कर रहा है? उसने कहा, मैं सेनाओं के प्रभु परमेश्वर के लिए अत्यंत उत्साही रहा हूँ, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा को छोड़ दिया, तेरे वेदियों को ढा दिया और तेरे भविष्यद्वक्ताओं को तलवार से मार डाला। और मैं, हाँ, केवल मैं ही बचा हूँ और वे मेरा प्राण लेने को ढूंढ रहे हैं। तब प्रभु ने उससे कहा, जा, अपने मार्ग से दमिश्क के जंगल की ओर लौट जा, और जब तू वहां पहुंचे तो हजाएल का अभिषेक कर कि वो सीरिया का राजा हो, और निमशी के पुत्र येहू का अभिषेक कर कि वो इज़राइल का राजा हो, और अबेल महोला के शाफात के पुत्र एलीशा का अभिषेक कर कि वो तेरी जगह भविष्यद्वक्ता हो। और ऐसा होगा कि जो हजाएल की तलवार से बच निकलेगा उसे येहू मार डालेगा, और जो येहू की तलवार से बच निकलेगा उसे एलीशा मार डालेगा। तो भी मैंने इज़राइल में अपने लिए 7,000 छोड़ रखे हैं, वे सब जिनके घुटने बाल के आगे नहीं झुके, और हर वो मुंह जिसने उसे चूमा नहीं है। एक राजा 19:18।
एलिया का गुफा अनुभव यह दर्शाता है कि नबी संदेश से और अपने संदेश व कार्य के प्रभाव के बारे में अपनी धारणा के कारण हतोत्साहित था। मूसा परमेश्वर के घोषित संदेश का बचाव कर रहा था और एलिया ने उस संदेश से हाथ खींच लिए थे। संदेश वही है, फर्क केवल इतना है कि एक कलीसिया के अंदरूनी पहलू से संबंधित है और दूसरा कलीसिया के बाहरी पहलू से। फिर भी भविष्यद्वाणी की दृष्टि से दोनों मिलकर प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 के दोहरे संदेश को चित्रित करते हैं। गुफा से संबंधित सभी सत्यों के विषय में मुझे जिस बात पर जोर देना है वो ये है कि अंतिम दिनों में दोनों ही स्थितियों में व्यक्त किया गया हतोत्साह संदेश और उसके प्रभाव को लेकर है। मूसा और एलिया दोनों उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आवाज को सुनते और देखते हैं, जो कि प्रभु का वचन है। वो वचन उसके दया और सत्य से परिपूर्ण स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। भजनकार भी परमेश्वर की दया दिखाए जाने की प्रार्थना करता है, जो उसका ही स्वभाव है। उसकी दया देखने के लिए भजनकार ये वादा करता है कि वो उस बात को सुनेगा जो आत्मा कलीसियाओं से कहती है।
प्रधान संगीतज्ञ के थोड़ा कोरह के पुत्रों का भजन। हे प्रभु, तू अपने देश पर अनुग्रहकारी रहा है। तूने याकूब की बंधुआई को लौटा उल्टा दिया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है। तूने उनके सब पापों को ढांप दिया है। सेला। तूने अपना सारा क्रोध दूर कर दिया है। तू अपने प्रचंड रोष से फिर गया है। हे हमारे उद्धार के परमेश्वर, हमें फिर बहाल कर और हमारे प्रति अपना क्रोध समाप्त कर। क्या तू हमसे सदा क्रोधित रहेगा? क्या तू अपना क्रोध पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनाए रखेगा? क्या तू हमें फिर जीवन न देगा ताकि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे प्रभु, हमें अपनी करुणा दिखा और हमें अपना उद्धार प्रदान कर। मैं सुनूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहेगा, क्योंकि वो अपनी प्रजा और अपने पवित्र जनों से शांति की बात करेगा, परंतु वे फिर मूर्खता की ओर न लौटें। निश्चय ही उसका उद्धार उनके निकट है जो उससे डरते हैं, ताकि महिमा हमारे देश में वास करे। करुणा और सत्य परस्पर मिले हैं, धर्म और शांति ने एक दूसरे को चूमा है। सत्य पृथ्वी से अंकुरित होगा और धर्म आकाश से झांकेगा। हाँ, प्रभु वही देगा जो भला है, और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और हमें उसके पदचिन्हों की राह में रखेगा। भजन संहिता 85:1-13।
ध्यान दे कि दया और सत्य वही इब्रानी शब्द एमित है,
जिसका हम उल्लेख कर रहे थे, जो धार्मिकता और शांति उत्पन्न करते हैं, उन्होंने चूम लिया है, वे जुड़ गए हैं। भजनकार अपना गीत अन्वेषणकारी न्याय के अंतिम दिनों के संदर्भ में रखता है, जब परमेश्वर ने अपने लोगों के अधर्म को क्षमा किया है। निवेदन ये है कि प्रभु अपने लोगों को पुनर्जीवित करें।
पवित्र आत्मा की सेवकाई के अंतर्गत एक जागृति और एक सुधार अवश्य होना चाहिए। जागृति और सुधार दो भिन्न बातें हैं। जागृति का अर्थ है आत्मिक जीवन का नवीनीकरण, मन और हृदय की शक्तियों का सजीव हो उठना, आत्मिक मृत्यु से पुनरुत्थान। सुधार का अर्थ है पुनर्संगठन, विचारों और सिद्धांतों, आदतों और आचरण में परिवर्तन। जब तक वो पवित्र आत्मा की जागृति से जुड़ा न हो, सुधार धार्मिकता के अच्छे फल उत्पन्न नहीं करेगा। जागृति और सुधार को अपना नियुक्त कार्य करना है, और इस कार्य को करते हुए उन्हें परस्पर सम्मिलित होना चाहिए। चयनित संदेश, पुस्तक 1, वन से 838।
भजनकार जिस पुनर्जीवन की याचना करता है, वो ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना को दर्शाता है जो जानता है कि वो मृत है। भजनकार जिस पुनर्जीवन की मांग करता है, उसे किसी लाओदीकियाई के लिए मांगना बहुत कठिन है, क्योंकि लाओदीकियाई को ये पता ही नहीं होता कि वो आध्यात्मिक रूप से मृत है। पर यदि ऐसा न होता तो उसे पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता ही न होती। ये पुनर्जीवन तब होता है जब हम इस पर सहमत हों कि प्रभु परमेश्वर जो बोलेगा उसे सुने, और उस पुनर्जीवन को सुनिश्चित करने से पहले कोई और कार्य नहीं आना चाहिए। यही पुनर्जीवन तब आता है जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है।
हमारे बीच सच्ची धर्मपरायणता की जागृति हमारी सभी आवश्यकताओं में सबसे बड़ी और सबसे तात्कालिक आवश्यकता है। इसी की खोज हमारा प्रथम कार्य होना चाहिए। सिलेक्टेड मैसेजेस, पुस्तक 1, अन्वय 21।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के संदर्भ में सिस्टर व्हाइट निम्नलिखित कहती हैं।
जब हम एक समुदाय के रूप में ये समझेंगे कि ये पुस्तक हमारे लिए क्या अर्थ रखती है, तब हमारे बीच एक महान जागृति दिखाई देगी। मंत्रियों के लिए गवाहियां 113 एक कप।
रिवाइवल शब्द का अर्थ जीवन में वापस लाना है। जो लोग 144,000 में चुने गए हैं, उन्हें पहले ये पहचानना होगा कि वे मृत हैं और उन्हें पुनर्जीवन की आवश्यकता है। ये तथ्य कि 144,000 मृत हैं उस संदेश का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी मुहर अनुग्रह का समय समाप्त होने से ठीक पहले खुलती है। इस सत्य के विषय में हमारे पास और भी बहुत कुछ कहने को है। जो उन्हें पुनर्जीवित करता है वो दया है, जो परमेश्वर उन पर तब करता है जब वो उन्हें पुनर्जीवित करता है और उन्हें अपनी धार्मिकता देता है। जो उन्हें पुनर्जीवित करता है वो ये सत्य है कि यीशु अल्फा और ओमेगा है, और ये समझ उनके भीतर ऐसी शांति उत्पन्न करती है जो सारी समझ से परे है। प्रतिज्ञा ये है कि सत्य पृथ्वी से फूट निकलेगा। सत्य के रूप में प्रस्तुत वो संदेश जो अल्फा और ओमेगा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न होता है, क्योंकि वो पृथ्वी से फूटता है। प्रारंभ में संदेश संयुक्त राज्य अमेरिका से आया था, और अंत में संदेश उसी स्थान से फूटकर निकलता है। परमेश्वर के गद तूफावासियों को एक प्रतीक मानते हुए हम उन अन्य भविष्यद्वक्ताओं पर विचार करेंगे जो प्रतीकात्मक रूप से एक गुफा में रहे हैं। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एलिया बताया, और जब उसे ये जानने की आवश्यकता हुई कि क्या यीशु वही आने वाले मसीहा है, तब यूहन्ना कारागार में था। उसे यीशु का सच्चा चरित्र जानना था। उसे ये भी जानना था कि जो संदेश उसने प्रचारित किया था और जो संदेश यीशु निरंतर प्रचारित कर रहे थे, क्या वही सच्चा संदेश था। उसने अपने शिष्यों को ये प्रश्न यीशु से पूछने के लिए भेजा, और यीशु ने उनके प्रश्न को छोड़कर उन्हें अपनी महिमा दिखाई।
इस प्रकार दिन बीतता गया। यूहन्ना के चेले सब कुछ देखते और सुनते रहे। अंत में यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें ये कहकर भेजा कि जाकर यूहन्ना को बताएं कि उन्होंने क्या देखा था, और कहा, धन्य है वो जो मुझमें ठोकर खाने का कोई कारण न पाए। लूका 7:23-RV। उसकी दिव्यता का प्रमाण पीड़ित मानवता की आवश्यकताओं के प्रति उसके अनुकूलन में देखा गया। हमारी निम्न अवस्था तक उसके झुकने में उसकी महिमा प्रकट हुई। शिष्यों ने संदेश पहुंचा दिया, और वो पर्याप्त था। यूहन्ना ने मसीह के विषय में की हुई भविष्यवाणी को याद किया। प्रभु ने मुझे नम्रों को शुभ समाचार सुनाने के लिए अभिषिक्त किया है। उसने मुझे टूटे हृदय वालों को बांधने, बंदियों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा करने और जो बैधे हुए हैं उनके लिए कारागार का द्वार खोलने के लिए भेजा है, प्रभु के अनुग्रह के वर्ष की घोषणा करने के लिए। यशाया 61:1-2। मसीह के कार्यों ने न केवल ये घोषित किया कि वो मसीह है, बल्कि ये भी दिखाया कि उसका राज्य किस रीति से स्थापित होना था। यूहन्ना पर वही सत्य प्रकट हुआ जो जंगल में एलिया पर हुआ था, जब एक बड़ी और प्रबल आंधी ने पहाड़ों को चीर दिया और प्रभु के सामने चट्टानों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। परंतु प्रभु उस आंधी में न था, और आंधी के बाद भूकंप, परंतु प्रभु भूकंप ननीय था, और भूकंप के बाद आग, परंतु प्रभु आग में न था, और आग के बाद परमेश्वर ने भविष्यद् वक्ता से एक मंद हल्की आवाज में कहा, 1 राजा 19:11-12। इसी प्रकार यीशु को अपना कार्य हथियारों की टंकार और सिंहासनों व राज्यों को उलटने पलटने से नहीं, बल्कि दया और आत्म बलिदान के जीवन द्वारा मनुष्यों के हृदयों से बोलकर करना था।
परमेश्वर की शक्ति उसके वचन के माध्यम से संप्रेषित होती है, वो मनुष्यों के हृदयों तक पहुंचाई जाती है। यही धीमे शांत स्वर का पाठ था। फिर भी एलिया का संदेश एक बाह्य संदेश है जो परमेश्वर के लोगों के बाहर की शक्तियों की पहचान कराता है। अंतिम दिनों में मसीह एलिया से कह रहे थे कि शक्ति उसके वचन ही में स्थित है, फिर भी हथियारों की टकराहट और सिंहासनों राज्यों का उलट जाना, जिसे विनाशकारी पवन, भूकंप और आग द्वारा दर्शाया गया है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उल्लिखित 3 बाहरी शक्तियों का प्रतीक है जिनका सामना परमेश्वर के लोगों को करना पड़ेगा। विनाशकारी पवन बाइबल की भविष्यवाणियों में इस्लाम का प्रतीक है। भूकंप फ्रांसीसी क्रांति के विद्रोह और अराजकता का प्रतिनिधित्व करता है। आग सदोम और गमोरा पर आए विनाश का प्रतीक है। एलिया गुफा तक पहुंचने के लिए पोप की सत्ता से भाग कर आया था, इसलिए प्रभु ने उसे प्रकट किया कि संसार के अंत के संकट को बनाने वाली सारी दुष्ट शक्तियों के बावजूद परमेश्वर की शक्ति धीमे शांत स्वर में ही मिलती है। मूसा, एलिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सभी इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने एक गुफा में परमेश्वर के चरित्र का दर्शन किया। गुफा ही वो एकमात्र चिन्ह है जो दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी को दिया जाएगा। यीशु ने व्यभिचारी और दुष्ट पीढ़ी के बारे में कहा जो अन्वेषणात्मक न्याय के अंतिम दिनों की पीढ़ी है। उस पीढ़ी के लिए चिन्ह नबी योना था, जिसने 3 दिन एक गुफा, एक वेल के पेट में बिताए थे।
और जब लोग बहुतायत से इकट्ठे हो गए, तब वो कहने लगा, ये एक दुष्ट पीढ़ी है, ये चिन्ह मांगती है, परंतु इसे योना भविष्यद् वक्ता के चिन्ह को छोड़कर कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जैसे योना निनेवियों के लिए एक चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए होगा। लूका 11:29-30।
योना 3 दिन और 3 रात वेल के पेट में रहा, जैसे कि यीशु 3 दिन तक कब्र में रहे। योना एक चिन्ह था और यीशु भी वैसे ही है। वे पुनरुत्थान के चिन्ह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो निश्चित रूप से मृत्यु के बाद आता है।
तब कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उत्तर देकर कहा, गुरु, हम आपसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। परंतु उसने उन्हें उत्तर दिया और कहा, दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह मांगती है, परंतु उसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा सिवाय भविष्यद् वक्ता योना के चिन्ह के, क्योंकि जैसे योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के हृदय में रहेगा। नीनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ न्याय में उठ खड़े होंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना के प्रचार पर मन फिराया, और देखो यहाँ योना से भी बड़ा है। मत्ती 12:28-41।
यदि हम इतिहास के पुनरावृत्ति के सिद्धांत को इस तथ्य के साथ समझें कि समस्त पवित्र इतिहास संसार के अंत को चिन्हित करता है, तो योना और मसीह की मृत्यु, दफा और पुनरुत्थान अब परमेश्वर की प्रजा के लिए चिन्ह भी है और संदेश भी। जब योना को मछली के पेट से उगल दिया गया, तब उसने संदेश का प्रचार किया, ठीक वैसे ही जैसे जब स्वर्गदूत ने उस गुफा के मुहाने से पत्थर हटाया
जिसमें मसीह थे, तो मसीह के पुनरुत्थान का संदेश तुरंत घोषित किया गया। मूसा, एलिया, योना और मसीह द्वारा जिनका प्रतिनिधित्व किया जाता है, वे केवल अंतिम दिनों की परमेश्वर की प्रजा का ही नहीं, बल्कि उन संदेशों का भी प्रतीक है जो उनमें से प्रत्येक ने दिए। योना का चिन्ह उस गुफा के अनुभव को भी शामिल करता है जहां मसीह का दयालु स्वभाव प्रकट होता है। वही दया जो यीशु ने एलिया के प्रति दिखाई, वही योना के प्रति भी दिखाई गई जब वो संदेश का प्रचार करने की अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था। योना के बारे में कहने को बहुत कुछ और है, पर अब अन्य बिंदुओं को संबोधित करना आवश्यक है। गुफा अन्य बातों के साथ साथ मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतीक है। अंतिम दिनों में परमेश्वर की वाचा के लोगों के बारे में अनेक साक्षियों की गवाही है कि वे मर चुके थे और फिर पुनर्जीवित हुए। निस्संदेह परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए एक मसीही का नया जन्म होना आवश्यक है, और ये पुराने शारीरिक मनुष्य की मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु भविष्यवाणी की दृष्टि से इसका अर्थ इससे भी अधिक है। ये ऐसे संदेश की ओर संकेत करता है जो अपनी राह में ही रोक दिया जाता है। एलिया ने संदेश का प्रचार करना रोक दिया, योना संदेश के प्रचार से भाग गया, यूहन्ना को कारागार में डालकर मार डाला गया, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। इसलिए योना का चिन्ह केवल मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में नहीं है, ये एक संदेश की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में है, और परमेश्वर के वचन में प्रतिरूपित सभी संदेश उस अंतिम चेतावनी संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पिता ने यीशु को दिया, जिसने उसे जाकी का मुखौले को दिया, जिसने उसे नबी को दिया, जिसने उसे लिखकर कलीसियाओं को भेज दिया। परमेश्वर मूसा के गुफा वाले अनुभव में उस संदेश को समाप्त कर देने और फिर से आरंभ करने को तैयार था। एलिया ने दूत के रूप में अपना कार्य समाप्त किया और गुफा की ओर भाग गया। योना तर्शीश भाग गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या कर दी गई, और यीशु की भी। इन सब गवाहियों को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लाकर एक दूसरे के साथ संग्रहित करना है। दानियेल और प्रकाशित वाक्य दो पुस्तकें हैं, पर यीशु की गवाही ये बताती है कि वे एक ही पुस्तक भी है। उनमें बाइबल जैसी ही विशेषताएं पाई जाती हैं। दो पुस्तकें जो मिलकर एक पुस्तक बनती हैं, और दो लेखक जो दो गवाहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दानियेल, जो बाबुल का और उसके बाद मादे फारस का बंदी था, प्रतीकात्मक रूप से तब मर गया जब उसे सिंहों की मांद में डाला गया। योना प्रतीकात्मक रूप से तब मर गया जब उसे वेल ने खा लिया। प्रकाशित वाक्यकर्ता यूहन्ना प्रतीकात्मक रूप से तब मर गया जब उसे खौलते तेल में डाल दिया गया। विलियम मिलर मर गए, पर उनके पास ये प्रतिज्ञा है कि धर्मियों के पुनरुत्थान के लिए स्वर्गदूत उनकी कब्र पर प्रतीकात्मक कर रहे हैं। फ्यूचर फॉर अमेरिका मंत्रालय 18 जुलाई 2020 को प्रतीकात्मक रूप से मर गया। अंतिम चेतावनी संदेश पापाई सत्ता के प्राणघातक घाव के चंगे होने के संदर्भ में रखा गया है। उस घाव का चंगा होना प्रकाशित वाक्य के अध्याय 13 और 17 का एक विशिष्ट विषय है। जब वो प्राणघातक घाव चंगा हो जाएगा, तो पुनर्जीवित पापायत प्रकाशित वाक्य के अध्याय 17 में दर्शाए गए 8वें राज्य के रूप में प्रकट होगा। उसे 8वां के रूप में पहचाना गया है, अर्थात वो 7 में से 8 संख्या पुनरुत्थान का प्रतीक है, क्योंकि वाचा संबंध की मोहर के रूप में खतना किसी पुत्र के जन्म के 8वें दिन किया जाना था। मसीही युग में वो रीति बपतिस्मा द्वारा प्रतिस्थापित की गई, और बपतिस्मा मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान का प्रतीक है। मसीह 7वें दिन के अगले दिन जी उठे, इसलिए भविष्यवाणी के अर्थ में वे 8वें दिन पुनरुत्थित हुए। 1000 वर्षों के विश्राम के बाद नवनिर्मित पृथ्वी 8वीं सहस्राब्दी में पुनरुत्थित होती है।